आगे कौमे आद की तरफ इशारा। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, आदियों ने भी रसूलों को झुटलाया, जबकि उनसे इनके भाई हूत ने कहा, क्या तुम डरते नहीं? यही दावत का अंदाज रखिए, अल्लाह का डर और इताअत रसूल की। मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मेरा सवाब तो तमाम जहान के परवरदिगार के पास है। और क्या तुम एक एक टीले पर बतौर खेल तमाशा यादगार इमारत बना रहे हो और सनत वाले मजबूत महल तामीर कर रहे हो, गोया कि तुम हमेशा यही रहोगे? और जब किसी पर हाथ डालते तो सख्ती और जुल्म से पकड़ते हो। अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो, इससे डरो जिसने इन चीज़ों से तुम्हारी इमदाद की जिन्हें तुम जानते हो, इसने तुम्हारी मदद की माल से और औलाद से, बागात और चश्मों से, और मुझे तो तुम्हारी निस्बत बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। दर्द महसूस कीजिए नबियों का कौमों के लिए, उन्होंने कहा आप वाज कहें या वाज कहने वालों में ना हो, हम पर यकसा है। स्टबन, डिटाई का अंदाज है, हम नहीं मानेंगे, हमने नहीं सुधरना। ये तो बस पुराने लोगों की आदत है और हम हरगिज अजाब नहीं दिए जाएंगे। चूंकि आदियों ने भी हजरत हूद को झुटलाया, इसलिए हमने इन्हें तबाह कर दिया। यकीनन इसमें निशानी है और इनमें अक्सर बेईमान थे। बेशक आपका रब वही गालिब मेहरबान है। निशानियों की बात है, बार बार की पकड़ की बात है, तो आयत 90 से तदब्बुर और अमल। अपने वालदैन के लिए मगफरत और रहमत की दुआएं मांगिए, चलिए मांग ले। रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किसी मुसलमान को कुरान की कोई सूरत सिखाएं और उसके ऊपर गौर व फिक्र करना सिखाइए। किसी की कोई नसीहत सुने और इस पर अमल की कोशिश करें और अपनी अना को आड़े ना आने दें। हम कहते हैं मैं क्यों सीखूं, मैं तो सिखाती हूँ, तो फिर याद रखिए सीखेंगे नहीं तो आगे से सिखाएंगे कैसे, और ये सिलसिला फिर ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुरान से रहनुमाई, बिगड़े से बिगड़े माहौल में भी हिदायत की शम्मा जलाई जा सकती है। अपना अपना हिस्सा डालिए, अच्छे दोस्त बनाइए, उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन वो अल्लाह की इजाज़त से आपके लिए सिफारिश करेंगे। नूह अलैहिस्सलाम का सब्र तवील हुआ तो इनकी दुआ भी जल्द कबूल हुई। ये बड़ी खूबसूरत बात है, इसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। गौर व फिक्र की बात है, सच्ची ज़ुबान से मुराद ज़िक्र खैर और मुकाम और मर्तबे का बुलंद होना है। अल्लाह हमें ये नेमतें अता फरमाए। आलीशान इमारतें आलीशान मुस्तकबिल की जमानत नहीं, आमाल अच्छे करने। कौमे आद का अमल क्या था, बड़ी इमारतें बनाते थे, हाई राइज, लेकिन वो इमारतें उनको अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकी। नेक दोस्त नफा बख्श होता है, दिली नेक दोस्त सिफारिश करने वाला होता है। दुनिया की मोहब्बत का हद से बढ़ जाना अल्लाह की मोहब्बत से बेनियाज कर देता है, अल्लाह इस मोहब्बत को कम करते हैं। आगे 141 से एक और कौम, कस्सबत समूद उल मुरसलीन। समूदियों ने भी पैगंबरों को झुठलाया, इनके भाई साले ने फरमाया क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का मानदार पैगंबर हूँ, तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। एक ही अंदाज है पैगाम का हर नबी के। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत भी नहीं मांगता, मेरी उजरत तो बस परवरदिगारे आलम पर ही है। क्या इन चीज़ों में जो यहाँ है तुम अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे, यानी इन बागों और इन चश्मों और इन खेतों और इन खजूरों के बागों में जिनके शगुफे नरम व नाजुक हैं, और तुम पहाड़ों को तराश तराश कर पुरतकल्लुफ मकानात बना रहे हो? पुरतकल्लुफ मकानात बनाना पसंदीदा नहीं, साफ सुथरा घर हो, बड़ा हो, नो वरीज, लेकिन पुरतकल्लुफ, सजा समरा, डेकोरेशन और ये वो, और फिर वही बुत बनते रहते हैं जो नमाजों में भी आंखों के आगे आते रहते हैं कि फलां को साफ किया नहीं, मेहमान आ जाए तो फिर फिक्र लगती है टूट ना जाए, कोई बच्चा आ जाए तो दिल भी साथ ही हिलने लग जाता है। साफ सुथरे घर रखिए, खुले बनाइए, साफ रखिए, क्लीन एंड क्लियर हो, लेकिन उसको म्यूजियम या फिर बिल्कुल आप कह लीजिए कि बहुत डेकोरेशन सेंटर ना कोई बना लीजिए। बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, बेबाक हद से गुजर जाने वालों की इताअत से बाज आ जाओ। जो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह भी नहीं करते, वो बोले कि बस तू इनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया। एक और ताना मिल गया दीन के रास्ते में, तू तो हम जैसा ही इंसान है, अगर तू सच्चों से है तो कोई मौजजा ले आ। आपने फरमाया ये है ऊँटनी, पानी पीने की एक बारी इसकी है और एक मुकर्रर दिन की बारी पानी पीने की तुम्हारी है। खबरदारी से बुराई से हाथ न लगाना वरना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हें गिरफ्त में ले लेगा। हाईलाइट कीजिए, इससे एक अमल का नुकता निकलता है। बंदा बहुत बड़ी बड़ी नेमतें मांगता है लेकिन ये भूल जाता है कि हर नेमत एक प्राइस टैग लेके आती है। हो सकता है हमने भी कुरान का तोहफा मांगा हो, कुरान मिल गया तो अब बोझल लगने लगे। ऐसा है तो नहीं है, लेकिन अगर किसी के भी दिल में ये दौरे कुरान बोझल लगे तो इस्तग़फार करें, क्योंकि दिल से ना शुक्री करेंगे तो नेमत ही ना चली जाए। इन्होंने एक ऊँटनी मांगी कि चलो नबी की सदाकत मिलेगी, लेकिन हुआ क्या, जब ऊँटनी वो इनके लिए आजमाइश बन गई तो फाकरूहा, फिर उन्होंने भी इसकी कूंछें काट डाली, यानी ये पाँव के जो पीछे के बैक मसल्स होते हैं ना उसको कहते हैं उकर, आखिर वट एवर मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन है। बस वो पशेमान हो गए और अजाब ने इन्हें आ दबोचा, बेशक इसमें इबरत है और इनमें से अक्सर लोग मोमिन ना थे, और बेशक आपका रब बड़ा जबरदस्त और बड़ा मेहरबान है। क्या पता चला कि जो नेमत मांगे फिर उसका तकाजा भी पूरा करें, उसका हक भी अदा करने की पूरी कोशिश करें। कज़्ज़बत कौम लूत अल-मुरसलीन, कौम लूत ने भी नबियों को झुटलाया। इनसे इनके भाई लूत ने कहा, क्या तुम अल्लाह का खौफ नहीं रखते? देखिए नबी कितना दर्द रखते हैं कौमों का। मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह ताला पर है जो तमाम जहानों का रब है। क्या तुम जहान वालों में से मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो, और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया इनको छोड़ देते हो, बल्कि तुम हो ही हद से गुजर जाने वाले? उन्होंने जवाब दिया कि ऐ लूत, अगर तू बस ना आया तो यकीनन निकाल दिया जाएगा, धमकी यानी तुम्हें इस मुल्क से निकाल देंगे। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से सख्त नाखुश हूँ, इजहार करना चाहिए गलत चीज़ का अगर आप किसी चीज़ से नाखुश हो तो। मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे घराने को इस वबाल से बचा ले जो ये करते हैं। दुआएं मांगी अपनी नस्लों को इस बुराई से बचाने के लिए। बस हमने इसे और इसके मुतल्लिकीन को सबको बचा लिया सिवाय एक बुढ़िया के, कि वो पीछे रह जाने वालों में हो गई। क्या पता चला कि जहां अमल पीछे रह जाए वहां नसब भी काम नहीं आता। नबी की बीवी होना भी इस औरत के काम ना आया। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, फिर हमने बाकी और सबको हलाक कर दिया, और हमने इन पर एक खास किस्म का मीह बरसाया। कौन सा? पत्थरों का। बस बहुत ही बुरा मीह था जो डराए गए हुए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है, इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है गलबे वाला मेहरबानी वाला। क्या पता चला कि अल्लाह ताला की तरफ से जब पकड़ आती है तो दुनिया की कोई ताकत बंदे को बचा नहीं सकती। आगे एक और कौम जिसको कौम शुएब के नाम से हम पीछे बढ़ चुके, उनका एक नया नाम आपके सामने है, कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐका, ऐका वाले। ऐका कहते हैं जंगल बन यानी फॉरेस्ट। ऐका वालों ने भी रसूलों को जुटलाया, जबकि इनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हें डर खौफ नहीं है? मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह का खौफ खाओ और मेरी फरमाबरदारी करो। मैं इस पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, मेरा अजर तमाम जहानों के पालने वाले के पास है। ना पूरा भरा करो, कम देने वालों में शमूलियत ना करो, और सीधी सी सही तराजू से तोला करो। लोगों को इनकी चीजें कमी से ना दो, बेबाकी के साथ जमीन में फसाद ना मचाते फिरो। इस अल्लाह का खौफ रखो जिसने खुद तुम्हें और अगली मखलूक को पैदा किया। उन्होंने कहा, तू उनमें से जिन पर जादू कर दिया जाता है, तू तो हम जैसा एक इंसान है और हम तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। देखिए कितनी जहालत है, खुद अजाब मांग रहे हैं। कहा कि मेरा रब खूब जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो, चुनाचे उन्होंने इसे झुठलाया। तो इन्हें साइबान वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया, वो बड़े भारी दिन का अजाब था। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है, और इनमें से अक्सर मुसलमान न थे। और इन्ना रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, यकीनन तेरा रब वही गलबे वाला मेहरबानी वाला है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला की ये सिफत इसलिए आ रही है कि उसने कौमों की कौमों को नीस्तो नाबूद कर दिया। देखिए जरा तदब्बुर के नुक्ते 141 से आयात पे अमल। अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखते हुए किसी मुसलमान को सुबह शाम के अज़कार सिखाइए, इसी बार ने आपको भी याद हो जाएंगे। और कौन होंगे वो मुसलमान? आपके घर वाले, क्लोज फैमिली में से किसी को भी सिखाइए, और सबको सिखा देंगे तो और भी सदका जारिया होगा। कुफर को नापसंद करने की दुआ मांगिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में से एक दुआ, अल्लाहुम्म करिहु इलैयल कुफ्र वल फुसूका वल इसयान। ए अल्लाह, नापसंद कर दे मेरे लिए कुफर को, नाफरमानी को और फिस को। ये दुआएं मांगी, खुद ब खुद अल्लाह ताला दिल से इन चीज़ों की मोहब्बत कम कर देगा। कम तोलने के नुकसान और इसके इंजाम और सजा पर कुछ लिखिए, या कोई लिखा हुआ पढ़ा हुआ बोला हुआ दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ये अमली आपकी एक्टिविटी है। कुरान से रहनुमाई, अमानतदारी हर दौर के रसूलों और दाइयों का शुआर रही है। अल्लाह हमें भी अमानतदार रखे। अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल जाए तो बेशुमार गैर फितरी उमूर सर अंजाम पाने लगते हैं। मजलूम की बद्दुआ ज़रूर कबूल होती है, ख़ास तौर पर जबकि वो नेक लोगों में से हो। तो मजलूम की आह लेने से बचिए, कभी जुल्म ना कीजिए वरना आपकी आखिरी ज़िंदगी बहुत बुरी होगी। गौरव फिक्र, अमन व सलामती के नेमत के बगैर दूसरी नेमतों का मज़ा समझा नहीं जा सकता। मोमिन वो पसंद करता है जो अल्लाह को पसंद हो, और उसे नापसंद करता है जो अल्लाह को नापसंद हो। कौम लूत का अमल फितरत के खिलाफ था कि हैवानों में भी अमल नहीं पाया जाता। नाप तोल में कमी बेशी और ज्यादती से बचिए और सीधी तराजू रखें। रिश्तों की तराजू हो, कोई चीज़ बेचनी है, कोई जिम्मेदारी है, तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को आसन दर्जे पे पूरा कीजिए। आगे अब सूरत का एंड हो रहा है, जिसमें अब इसका नाम शोरा क्यों था वो आएगा आयत 192 से। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। यहाँ नोट कीजिए, नबी सल्लम पर एक इल्ज़ाम ये भी था कि आप शायर हैं, और आपको शायरी कौन सिखाता है? कुछ जिन आके सिखाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्ला वो जिन या शैतान समझते थे, और नबी पर जो वही आती थी उसको शायरी कहते थे। अल्लाह ने उसी का तोड़ कर दिया। और इसमें ना आपको कुरान का पूरा तारुफ भी आएगा, नोट करा सकी तो करा दूंगी। यानी कुरान क्या है, बल्कि यही आयात जो आपके सामने है आयत 192 से आगे, अगर कोई पूछे कुरान क्या है तो उलूमुल कुरान में ये आयतें पेश की जाती हैं। और बेशक्को शुबा ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है। इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है, आपके दिल पर उतरा है कि आप आगाह कर देने वालों में हो जाएं। साफ अरबी जुबान में है, अगले नबियों की किताबों में भी इस किताब का तस्करा है। क्या इन्हें ये निशानी काफ़ी नहीं कि हक्कानियत कुरान को तो बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं? और अगर हम इसे किसी आजमी शख्स पर नाजिल फरमाते, बस वो इनके सामने इसकी तिलावत करता, तो ये इसे बावर करने वाले ना होते। इसी तरह हमने गुनाहगारों के दिलों में इस इनकार को दाखिल कर दिया है। वो जब तक दर्दनाक अजाबों को मुलाहिजा न करें, ईमान न लाएंगे, बस वो अजाब इनको नागहां यानी अचानक आ जाएगा। वहुम ला यशऊरून, और वो शऊर भी ना रखते होंगे। क्या होगा? फयकूलू हल नहनु मुनजरून। उस वक्त ये कहेंगे, क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी? बस क्या ये हमारे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं? अच्छा ये भी बताओ कि अगर हमने इन्हें कई साल भी फायदा उठाने दिया, फिर इन्हें वो अजाब आ लगा जिनसे ये धमकाए जाते थे, तो जो कुछ भी ये बरतते रहे इनमें से कुछ भी फायदा ना पहुंचा सकेगा। हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर इसी हाल में कि इसके लिए डराने वाले थे नसीहत के तौर पर, और हम जुल्म करने वाले नहीं हैं। वमा तनज़्ज़लत बिही शयातीन। इस कुरान को शयातीन नहीं लाए, ना वो इस काबिल है, ना इन्हें इसकी ताकत है, बल्कि वो तो सुनने से भी महरूम कर दिए गए हैं। बस तो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को ना पुकार कि तू भी सजा पाने वालों में से हो जाए। और यह आयत है जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे खानदान को इकट्ठा किया और उनको दावत दी। वानजिर अशीरतक अलअक्रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दीजिए। आप भी अपना अमल अभी से लिख लें कि किसी करीबी रिश्तेदार को दीन की दावत देंगे आज आप। वक्फिस जनाह कलीमन इत्तबाक मिनल मोमिनीन। इसके साथ नरमी से पेश आ जो भी ईमान लाने वाला हो कि तेरी ताबेदारी करे। अगर ये लोग तेरी नाफरमानी करे तो तू ऐलान कर दे कि मैं इन कामों से बेजार हूँ जो तुम कर रहे हो। अपना पूरा भरोसा गालिब मेहरबान अल्लाह पर रख, जो तुझे देखता रहता है जबकि तू खड़ा होता है, और सजदा करने वालों के दरमियान तेरा घूमना फिरना भी। तू बड़ा ही सुनने वाला और खूब जानने वाला है। नबी सल्लम की मूवमेंट्स का सुनकर कैसा लग रहा है? यानी आप बीच में ऐसे नहीं थे कि बैठे रहते थे, आप दुनिया में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और अपने सहाबा के एक्टिविटीज को भी देखते थे। क्या मैं तुम्हें बतलाऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं, उचटती हुई सुनी सुनाई पहुंचा देते हैं, और इनमें से अक्सर झूठे हैं। शायरों की पैरवी वो करते हैं जो बहके हुए हों। क्या आपने नहीं देखा कि शायर एक बियाबान में सर टकराते फिरते हैं, और वो कहते हैं जो करते नहीं। जिन के कॉल ऑफ एल में तजाद होता है, मसलन तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊं, लाया के तोड़ के जो है शीर ले आऊं, कभी दो चार गानों या कोई शेरों की शगफ माजी में रहा हो तो सोचिए कितना कुफर बोलते, तुझे बनाया रब ने मेरे लिए, नऊज़ुबिल्ला सुम्मा नऊज़ुबिल्ला। तो कई ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं, सिवाय इनके जो ईमानदार और नेक अमल किए और बकसरत अल्लाह ताला का जिक्र किया और अपनी मजलूमी के बाद इंतकाम लिया, जिन्होंने जुल्म किया, और वो भी ये अभी जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं। क्या पता चला सूरत के आखिर में, आइए देखिए तदब्बुर और अमल। किसी मुसलमान को कुरान पाक की किसी आयत से नसीहत कीजिए और उसे कहिए कि वो भी ये बात दूसरों को बताए। अल्लाह का जिक्र और इस्तग़फ़ार कसरत से करें और हर दफ़ा अपने एटलीस्ट किसी एक गुनाह को जहन में रखिए, यानी एक ही गुनाह पे 100 बार तौबा कीजिए। अपने रिश्तेदारों के लिए कोई दावती प्रोग्राम मुरतब कीजिए, वानजी रशीर अतकल अकरबीन पर अमल करते हुए। कुरान से रहनुमाई, दिल मुर्दा हो जाए तो आदमी अल्लाह के अजाब को भी खेल बना लेता। ऐश परस जिंदगी की मुद्दत कितनी ही दराज क्यों ना हो, बंदे को हिसाब किताब से नहीं बचा सकती। बुर्दबारी, तवाजो और नरमी के बगैर दाई अपनी दावत में कामयाब नहीं हो सकता। गौर व फिक्र, कुरान सबसे अफजल किताब, अफजल फरिश्ता लेकर इसे नाजिल हुआ, अफजल तरीन हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नाजिल हुआ, और सबसे अफजल उम्मत उम्मत मुहम्मदिया पे आया। ये है रिसालत, एक मिशन है। अल्लाह इज्जत भी फिर उतनी ही देता है जितना काम बड़ा होता है। अमल सवाले के बगैर लंबी उम्र हलाकत का सबब है, इसलिए अपनी बढ़ती हुई उम्रों को देखिए और अपने अमाल की इसलाह कीजिए। नजूमी और काहिन शयातीन से सुनी हुई बातों में झूठ मिलाकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जो हक की पैरवी करता है और जानता है कि हर बात लिखी जा रही है, वो बिला तहकीक और बिला सोचे समझे कोई बात नहीं करता। अब शायरी से मुतलिक हमारा क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए? अच्छा शेर अच्छी चीज़ और बुरा शेर बुरी चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अपने मजमून के एतबार से होती हैं, तो गाने बजाने और नाजायज़ मोहब्बतें ये दिल में निफाक पैदा करती हैं, गिना जिना तक ले जाता है। इसलिए हमेशा ऐसी फिक्शन वाली चीज़ों से बचते हुए साफ सुथरी शायरी कीजिए, पढ़िए, सुनिए। नबी ने पढ़ी सुनी, इस पे पूरा मजमून है। हसान बिन साबित को अपने दुआ दी, अल्लाह मैयतु बि रूहिल कुदस। इनके शेर दुश्मनों को तीरों की तरह लगते थे, लेकिन बुरी शायरी को आपने पसंद नहीं फरमाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सूरत पूरी हुई। आगे सूरत नमल की चंद आयात हैं, और सूरत नमल चींटी चींटी क्यों, उन चींटियों की बातें क्या, इसके लिए हम किस्सा है सुलेमान पढ़ेंगे। आयत 1 से 59 छोटी छोटी आयतें इसमें देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसीन, तिल्का आयातुल कुरानी व किताबिम मुबीन, हुदा व बुशरा लिल मुमिनीन, अल्लज़ीना युकीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूकिनून। रुफ़े मुकत्तात है। ये आयतें हैं कुरान की, यानी वाज़े और रोशन किताब की, हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों के लिए, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। जो लोग क़यामत पर ईमान नहीं लाते, हमने इन्हें इनके करतूत ज़ीनतदार कर दिखाए, बस वो भटकते फिरते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और आखिरत में भी वो सख्त नुकसान जाफ्ता हैं। बेशक आपको अल्लाह हकीम व अलीम की तरफ से कुरान सिखाया जा रहा है। क्या पता चला कि आपने खुद नहीं लिखा, अल्लाह ने आपको दिया। तो आयत 6 पे अल्हम्दुलिल्लाह सलास पूरा हुआ। अब यहाँ फिर मूसा का किस्सा। आपको मूसा अलैहि सलाम पे रश्क नहीं आता? हर पारे में इनका तस्करा है, सुभान अल्लाह। इस काल मूसा लि अहलिही, अब यहाँ उनकी जिंदगी का अगला हिस्सा, पीछे दूसरा किस्सा था, अब उससे ऑनवर्ड अगली चीज है। याद होगा जबकि मूसा अलैहि सलाम ने अपने घर वालों से कहा, मैंने आग देखी है, मैं वहां से या तो कोई खबर लेकर या आग का कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगा ताकि तुम सेंक ताप लो। यानी मर्दों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए, बाहर के काम ज्यादा मर्द करें, घर के काम औरतें करें। जब वहां पहुंचे तो आवाज दी गई कि बाबरकत है वो जो इस आग में है, और बरकत दिया गया है वो जो इसके आसपास है, और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मूसा सुन बात, क्या इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, क्या मूसा अलैहिस्सलाम के दिल पे गुजरी होगी? जरा इसको इमेजिन कीजिए, और आपके दिल में भी शौक उभरना चाहिए कि अल्लाह ताला के साथ आपका मेरा मामला कैसा हो, कि हम अल्लाह ताला के साथ अदब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, बात कर सके, और हम बात करते हैं अल्लाह से नमाज में, अल्लाह बात करता है हमसे कुरान में। मूसा सुन, बात यह है कि मैं ही अल्लाहु गालिब बा हिकमत, तो अपनी लाठी डाल दे। मूसा ने जब इसे हिलता जुलता देखा इस तरह के गोया कि वो एक सांप है, तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भाग गया और पलट कर भी ना देखा, बशर्ते डर तो आता है ऐसी चीजों को देखकर। ए मूसा खौफ न खा, मेरे हजूर में पैगंबर डरा नहीं करते, लेकिन जो लोग जुल्म करें फिर इसके बस नेकी करें इस बुराई के पीछे, तो मैं भी बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफेद चमकीला होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। तू नौ निशानियां लेकर फिरौन और उसकी कौम के पास जा, यकीनन वो बदकारों का गिरोह है। अल्लाह ताला मायूस नहीं होते किसी की भी हिदायत से, इसीलिए अंबिया कराम भी नहीं होते थे। फलम्मा जात हुमाया तो ना मुबसीरा, पस जब इनके पास आंखें खोल देने वाले हमारे मौजज़े पहुंचे तो कहने लगे ये तो सरीख जादू है। उन्होंने इनकार कर दिया हालांकि इनके दिल यकीन कर चुके थे सिर्फ जुल्म और तकबर की बिना पर। बस देख लीजिए कि इन फितना बर्दाश्त लोगों का अंजाम कैसा हुआ। और यकीनन हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफद्दलना अला कसीरे मिन इबादिहिल मोमिनीन, तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपने बहुत से ईमानदार बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, और कहने लगे लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हम सब कुछ दिए गए, बेशक ये बहुत खुला हुआ फजले इलाही है, जो नेमत मिले उसको अल्लाह का फजल कहें। सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम दो यूनिक प्रॉफिट थे कि इनके पास दीन की भी दौलत थी, दुनिया की भी दौलत थी, और मौजज़ों की भी दौलत थी। इससे पता चलता है कि किसी दीनदार के पास आज दौलत भी हो सकती है और अल्लाह ताला उसको कोई निशानी भी दिखा सकता है दूसरों से हटाकर। तो यहाँ उनकी तारीफ है, लेकिन उनकी दौलत ने उनको बिगाड़ा नहीं है। तो दौलत बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसका बुरा इस्तेमाल इसको बुरा बना देता है। सुलेमान के सामने इनके तमाम लश्कर जिन्नात और इंसान और परिंद में से जमा किए गए, हर हर किस्म अलग अलग दर्जा बंदी की गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा है चींटियों अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। पता नहीं आपके कदमों में आती हुई चींटियां क्या क्या चीखती होंगी, अब हमें तो समझ नहीं आती ना। वैसे कभी आपने परिंदों को चू 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 करते देखा, बिल्लियों को देखा, तोतों को, पता नहीं क्या लड़ाई हो रही होती है सास बहू की, क्या मियाँ बीवी का झगड़ा होगा चिड़ी चिड़े का कि कपड़े नहीं दिला रहे बच्चों के फिर महंगे हो जाएंगे फिर। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको खुश रखे, लेकिन अमूमन चू चा चीचा होती हैं। कहते हैं एक था चिड़ा एक थी चिड़ी, फिर दोनों की शादी हो गई तो वो गए चिड़चिड़े। चलिए अल्लाह ताला आपको हंसता रखे, एक सुन्नत सीखी है ना अपने पीछे, अदहक अल्लाह सीना का। चलिए चिंटियों की बातें सुनकर क्या हुआ, फतबस्सम दाहिक मिन कौलिहा, इसलिए मैंने भी आपको थोड़ा सा स्माइली कर दिया कि हम भी सुन्नत पे अमल कर लें। इसकी इस बात से सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर हंस दिए और दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। क्या पता चला जब कोई अनयूजल नेमत मिले तो दुआ मांगे। आइए जरा इस दौरे कुरान की नेमत पे इस दुआ को हम मांग लें, रब्बी औज़ेनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया वअला वालिदैया वअन अअमला सालिहन तरदाहू वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, आमीन। आपने इसमें अपने और अपने माँ बाप के लिए दुआ मांग ली, और आगे एक ऐसी दुआ आएगी जिसमें माँ बाप और बच्चे दोनों आते हैं। तदब्बुर करते हैं इन पहली 19 आयतों पे। अल्लाह के दो नामों अल अलीम और अल हकीम के साथ दुआ मांगे कि अल्लाह ताला आपको भी इल्म और हिकमत दे, आमीन तो कह दें। चींटियों के बारे में कोई इल्मी प्रोग्राम बनाइए, किसी भी तरह क्या आप उनकी बातें सुन सकते हैं, अभी तक तो साइंस ने ऐसी कोई तरक्की नहीं की। हालांकि अब होता है कि चींटियों के बारे में बहुत सी मालूमात आगे आ गई हैं, चींटियां अपने परों को बजा के बातें करती हैं जी, और चींटी का अल्लाह ने जिक्र कुरान में कर दिया, कहते हैं क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। लेकिन अल्लाह की मखलूक की खूबियां देखिए, चींटियां गैर मामूली तरीके से काम करती हैं, लीडरशिप और फॉलोअर्स उनके ताल्लुकात चींटियों में क्वीन, वर्कर्स। फिर चूंटा बेचारा तो ऐसे ही लगता है कि घर में सोया ही रहता है। ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट फीमेल है इस दफा। इसमें अब कोई मेल आपका घर वाला बात सुन के नाराज हो तो नाराज हो जाए, फिर हम क्या करें, हम खवातीन, हमने तो खवातीन को खुश करना है, राइट। आप चूंटी से मुतल्लिक कुछ सुनिए, डॉक्यूमेंट्रीज भी होती है, दी एंड्स एक बुक भी है छोटी सी इंग्लिश में, तो इसमें बहुत कुछ हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लासेस में जानते हैं और कुछ ना कुछ देखते भी हैं। उसके बाद ये दुआ जो भी हमने मांगी आपने शऊर से मांगनी है, इस सोच के साथ कि अल्लाह मुझे भी कुरान सिखा दे। सुलेमान को चींटियों की बोली समझ आ गई तो वो ये दुआ करें, और जब आपको मुझे रब का कलाम समझ आ जाए तो हमें कितना खुश नहीं होना। करते हैं नियत, अपनी बाकी जिंदगी कुरान की तालीम और इल्म में खपा दीजिए, नस्लें बन जाएंगी इंशाल्लाह आपकी मेरी। तो हम इस सोच से भी इस दुआ को मांगेंगे, अल्लाह तौफीक दे। कुरान पाक से रहनुमाई, इन मवाके पर मुस्कुराइए जहाँ मुस्कुराना चाहिए, और बदमिजाजी से बचिए। अब वो कौन सा मौका होता है जी, जब मियाँ सब घर आते हैं, आज आप सब ने मुस्कुराना है अपने अपने मियाँ को देख के। ये नहीं कहना वो बेसन लाए, चावल लाए, ये नहीं लाए, वो चने नहीं आए, और वो मुस्कुराएंगे, याद रहेगा। फिर बताइएगा लिखकर फीडबैक में कि क्या उसका रिस्पांस मिला। आप मुस्कुराना सीख रहे हैं इस क्लास में, ये पहला सबक है रिसालत के इस मिशन को आगे बढ़ाने का। मुस्कुराता चेहरा सबको अच्छा लगता है। मान लीजिए बच्चों में क्या खूबी है, स्माइल करते रहते हैं, ऐसे राले टपक रही हैं और मुंह से हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, सोते में स्माइल दे रहे हैं, भोले लगते हैं। चलिए, अल्लाह आपके वालदैन को कोई नेमत दे तो इस पर शुक्र अदा करें, क्योंकि वालदैन की नेमत औलाद के लिए भी नेमत होती है। तो पूछिएगा अपने वालदैन से कि उनको कोई नेमत मिली है, तो शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह किसी मामले का जिम्मेदार बनाए तो तकवा का तकाजा है कि इंसान अपने मातहतों का ख्याल रखे। ये हर जिम्मेदार के लिए एक स्लाइड है, इस पे गौर कीजिए। लिए दिए ना रहे, अपने हाल में ना रहिए, कौन क्यों नहीं आ रहा, कौन किधर है, कौन किस हाल में, लोगों में दिलचस्पी लीजिए। गौर व फिक्र, तौबा करने के बाद भी नेक बंदे अल्लाह से डरते हैं कि कहीं तौबा की शर्त में से कोई शर्त बाकी ना रह गई हो और इनकी बात पुरस हो जाए। मोमिन नेमतों पर फख्र करता है ना तकबर, बल्कि वो इन्हें अल्लाह की देन समझकर इनका शुक्र अदा करता है। वालदेन से मिलने वाला सबसे अच्छा विरसा क्या है भला, क्या मिला था आपको विरासत में? ईमान, इल्म और हिकमत है। चलिए आगे, बस पारे के एंड की तरफ है, 20 से ऑनवर्ड, एक कहानी जिसमें परिंदे से अल्लाह काम ले रहा है दीन का अपने। हजरत सुलेमान परिंदों की बोलियां जानते थे, एक दिन देखा क्या हुआ, वतफक्कदत तईर, आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? यकीनन मैं इसे सख्त सजा दूंगा, या इसे जिबा कर डालूंगा, या मेरे सामने कोई शरीफ दलील बयान करे। ऐसे लग रहा है कि कोई सख्त किस्म के मास्टर साहब है और स्टूडेंट के क्लास में ना आने पे गुस्से में आ रहे हैं। पहले दौर के उस्ताद ऐसे ही थे, इतने इन्वॉल्व होते थे, इतने कंसर्न्ड होते थे अपने शागिर्दों के बारे में। और एक अच्छे उस्ताद की यही खूबी है कि वो आने और ना आने वाले दोनों के बारे में आगाह हो, कौन आ रहा है तो किन हालात में आ रहा है, और कौन नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा। आप भी अपने साथियों का ख्याल रखा करें। खैर क्या हुआ, फमकस गैरा बईद, कुछ देर ज्यादा ना गुजरी थी कि आकर उसने कहा, मैं कैसी चीज की खबर लाया हूं कि आपको इसकी खबर ही नहीं, मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। तो झूठी खबरें ना सुना करें, सच्ची खबर। मैंने देखा है कि इसकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है, और इसका तख्त भी बड़ी अजमत वाला है। मैंने इसे और इसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने इनके काम इन्हें भले करके दिखला कर सही राह से रोक दिया, बस वो हिदायत पर नहीं आते कि इसी अल्लाह के लिए सजदे करें जो आसमान और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो सब कुछ जानता है। इसके सिवा कोई माबूद है बर हक नहीं, वो अजमत वाले अर्श का मालिक है। क्या पता चला, हुदहुद परिंदा, अल्लाह परिंदे से भी काम ले ले तो ले ले, जैसे अबाबीलों से काम लिया। ये है रिसालत, एक मिशन है। आप और मैं कर रहे हैं ना कोई काम अल्लाह के दीन का, अल्लाह के नबी की सुन्नत समझते हुए, तो ये हमारा अपने ऊपर एहसान है, या अपने माँ बाप पे होगा, या अपने उस्तादों पे होगा। अल्लाह और उसके रसूल पे कोई एहसान नहीं। अल्लाह चाहे अपने काम किसी से भी ले ले, तो आजिज़ी के साथ डरते धबकते हुए काम किया करें, कोई एटीट्यूड ना दिखाएं कि हमसे नहीं होता, कोई और कर ले, किसी से करा ले, हम थक गए, अब हमारी अपनी ज़िंदगी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब शादियां हो गई, अब बच्चों के बच्चे, जिस काम पे लगे हैं सर डाल के लगे रहिए, ताकि अल्लाह ताला आपसे ही काम ले। तो दुआ किया करें कि अल्लाहुम्मा इस्तखदिमनी वला तस्तबदिलनी, अल्लाह मुझसे ही अपने दिन की खिदमत ले ले, मुझे रिप्लेस ना करना यानी मुझे ना बदलना। तो अल्लाह तो काम ले लेता है, परिंदों से भी लिया, और इसे पता चलता है परिंदों को भी समझ है तौहीद की, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा अब हम देखें कि तूने सच कहा या झूठ है। पता चला कि हक है लीडर को कि जो बंदा कोई कह रहा है उसकी बात को वेरीफाई कराए। मेरे इस खत को ले जाकर इन्हें दे दे, फिर इनके पास से हट आ और देख वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी है सरदारो मेरी तरफ एक बावकत खत डाला गया, नोट करिएगा यहीं लिख लें, मलका सबा के खुद खुद खत दे के आ रहा है, तो मुसलमान हो जाएगी, मैं आपको अभी कहानी लीक आउट कर देती हूँ। और फिरौन के पास मूसा खुद आए थे तो नहीं माना, क्यों? रिसालत एक मिशन है, पक्की बात है। दिल में तकबर हो तो वक्त का नबी भी सामने आ जाए नहीं मानेंगे आप। और जिसमें तड़प थी तलब थी रोता था अल्लाह कोई हिदायत दे कोई बताए कोई सिखाए, तो उसका परिंदा भी पैगाम लेके आ जाए तो उड़ता हुआ आ जाएगा चलता हुआ आ जाएगा कि मैं जल्दी से इस पैगाम को ले लूँ। आज हम भी सोचें जब हमें खैर के मौके मिलते हैं तो हमारा उसमें क्या रवैया होता है। आगे से खत लिखने का अदब, इन्नहु मिन सुलेमान, जो सुलेमान की तरफ से है और बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। पहले अपना नाम लिखा, हम सबसे एंड पे लिखते थे जब कभी खत लिखते थे, पूरे खत में अगला सोचता ही रह जाता था किसका है किसका, एंड पे पता चलेगा। अब वो ईमेलों ने और व्हाट्सएप मैसेजेस ने ये खत्म कर दी, पहले ही देख लेते हैं, बल्कि आईडी देख के उठाते ही नहीं फोन कि अभी इनसे तो बात ही नहीं करनी। तो खत के शुरू में अपना तذکرہ करना और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है वो सूरत जिसमें दो दफा बिस्मिल्लाह, इसलिए पूरे कुरान में 114 दफा ही सूरत है। बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने यानी मलका ने कहा है मेरे सरदारों तो मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। देखिए इस औरत में हिकमत थी, मशवरे के साथ काम करती थी। मैं किसी अमर का कतई फैसला जब तक कि तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है कि आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। बस जब कासिद हजरत सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत ज्यादा बेहतर दे रखा है जो इसने तुम्हें दे दिया। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो, जा इनकी तरफ वापस लौट जा, हम इनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की इनमें ताकत नहीं, और हम इन्हें जलील और पस्त करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। आपने फरमाया सरदारो तुम में से कोई है जो इसके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही इसका तख्त मुझे ला दे। इसको हाईलाइट करिए, दावत का ये भी एक अंदाज है कि दूसरे को मरूब किया जाए। आने वाला जब आपसे मरूब होगा ना तो आपकी बात ज्यादा गौर से सुनेगा। हजरत सुलेमान वो तख्त ला कर दिखाना चाहते थे और मलका की जहानत का भी टेस्ट था। एक कवि है कल जिन कहने लगा आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले ही पहले मैं आपके पास ला देता हूँ, यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और मैं हूँ भी ईमानदार, यानी उसका कोई हिस्सा उतार के नहीं रखूंगा अपने पास। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं इससे पहले भी मैं आपके पास इसको पहुँचा सकता हूँ। जब आपने इसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफ़े के लिए शुक्रगुजारी करता है और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवार बुजुर्ग गनी और करीम है। हुक्म दिया कि इस तख्त में कुछ फेर बदल कर दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या इनमें से होती है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो आ गई तो इससे दरियाफ्त किया गया कैसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया ये गोया वही है। औरतें अपनी चीजों के बारे में बड़ी समझदार होती हैं, ये डब्बा मेरा है ये चमचा मेरा है ना, चलिए होनी चाहिए, समझदार औरतें ऐसी ही होती हैं। अच्छा गोया कि ये वही है, हमें इससे पहले इल्म दिया गया और हम मुसलमान थे, यानी मुतासिर हो गया हजरत सुलेमान से, इसे इन्होंने रोक रखा था, जिनकी वो लोग अल्लाह के सिवा परस्तिश करती रहती थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। इससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर ये समझ करके ये हौस है इसने अपनी पिंडलियाँ खोल दी। फरमाइए तो शीशे से मढ़ी हुई इमारत है। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है। नोट कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पीछे इकरार किया था, इसने भी कहा, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मती और फरमा बरदार बनती हूँ। क्या पता चला कि दिल में चूंकि तकबुर नहीं था, हालांकि मलका थी तो मान गई, तो तकबुर दौलतमंद होना नहीं है, तकबुर हक को जुटलाना है। चलिए तदब्बुर और अमल की बातें I-20 से। कोई खबर सुने तो इसकी तहकीक कर लें, क्योंकि खबरों की तहकीक करना कुरानी तरीका है। तोहफा दिल में मोहब्बत डालता है, इसलिए जिसकी हिदायत की तलब रखें उसे तोहफा दें। ये बड़ी अहम बात है, तोहफे उनको दें जिनको दीन की तरफ बुलाना है। रिश्वत की बुराई से दूसरों को खबरदार करें। रहनुमाई, आखिरत के तलबगारों के मकासद और दुनिया के तलबगारों के मकासद मुख्तलिफ होते हैं। बुराइयों का अच्छा लगना गुनाहों का वबाल है। जान लीजिए कि सबसे बड़ी नेमत दीन की नेमत है और दुनिया जायल हो जाने वाली है, इसलिए मोमिन इसकी तरफ मायल नहीं होता। तो लिखिए, दुनिया की तरफ मायल नहीं होना, आखिरत की तरफ होना। गौर व फिक्र, सरबरा को चाहिए कि मातहतों के जाहिर पे मामला करते हुए इनके उजर को कबूल कर ले, जैसे कि हजरत सुलेमान ने कबूल कर लिया। अहम मामलात में दूसरों से मशवरा लेना मुस्तहब और पस बेहतर है। मुखलसीन से लीजिएगा, यानी सिंसियर और लॉयल टू कॉज से लीजिएगा। कुरान सुन्नत के इल्म वालों से लीजिएगा। किताबों की इब्तदा मुकम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करना पसंदीदा है, यानी बंदे की हर नेमत या हर काम से पहले अल्लाह का नाम हो। गौर व फिक्र, इल्म और हिकमत से जो चीज़ें हासिल होती हैं वो ताकत और कुव्वत से मुमकिन नहीं। नेमत पर सबसे बड़ी शुक्रगुजारी यह है कि इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाए। शुक्र मौजूदा नेमतों को कैद कर लेता और गैर मौजूद नेमतों को करीब ले आता है, अल्लाह में शुक्रगुजार बना दे। अब आखिरी आयतें पारे की 45 से ऑनवर्ड। वलकद अरसलना इला समूद अखाहुम सालेहा, यकीनन हमने समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक बनकर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आपने फरमाया, मेरी कौम के लोगों, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी क्यों मचा रहे हो? तुम अल्लाह से इस्तग़फार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे, हम तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। आपने फरमाया, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के हाँ है, बल्कि तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। इस शहर में 9 सरदार थे जो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी कस्में खाकर वह अहद किया कि रात ही को साले और इनके घर वालों पर हम छापा मारेंगे और इनके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम इसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद ना थे, यानी कत्ल की कोशिश नबी के, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने खुफिया तदबीर यानी मकर किया और हमने भी, और वो इसे समझते ही ना थे। अब देख ले कि इनके मकर का अंजाम कैसा कुछ हुआ कि हमने इनको और इनकी कौम को सबको गारत कर दिया। ये हैं इनके मकान जो इनके जुल्म की वजह से उजड़े पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं इनके लिए उसमें बड़ी निशानी है। हमने इनको जो ईमान लाए थे और परहेजगार थे बाल बाल बचा लिया। क्या पता चला कि अम्बिया कराम के कत्ल की कोशिशें तक की गई और अल्लाह ने इनको बचा लिया। और लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, जबकि इसने अपनी कौम से कहा कि क्या बावजूद देखने भालने के फिर भी तुम बदकारी कर रहे हो? ये क्या बात है कि तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत से आते हो? हक यह है कि तुम बड़ी ही नादानी कर रहे हो। कौम का जवाब ये कहने के सिवा और कुछ ना था, आले लूत को अपने शहर से शहर बदर कर दो, ये तो बड़े पाकबाज बन रहे हैं। बस हमने इसे और इसके अहल को सिवा उनकी बीवी के सबको बचा लिया। इसका अंदाजा तो बाकी रह जाने वालों में हम लगा ही चुके थे और इन पर एक खास किस्म की बारिश बरसा दी गई। बस इन धमकाए हुए लोगों पर बड़ी बुरी बारिश हुई। कुल अल्हम्दुलिल्लाहि वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा, तो कह दीजिए कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है, इसके बरगजीदा बंदों पर सलाम है। क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक ठहरा रहे हैं? देखिए कितने खूबसूरत पैगाम पे पारा पूरा हुआ। तदब्बुर की बातें आयत 45 से ऑनवर्ड। दूसरों को आगाह कीजिए कि बदफाली का हुक्म सिर्फ परिंदों के साथ नहीं बल्कि हर उस चीज के साथ है जिससे बदशगुनी ली जाए। बदशगुनी की कराहत के सिलसिले में आई भी ये दुआ मांगिए, अल्लाह के नबी की दुआओं में से है, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुक वला खैरा इल्ला खैरुक वला इलाहा गैरुक। अल्लाह कोई बदशगुनी नहीं सिवाय इसके कि जिसको तू बदशगुनी करार दे, और कोई खैर नहीं सिवाय तेरी खैर के, और तेरे सिवा कोई इला नहीं। इसी तरह अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुसलमानों के खिलाफ काफिरों की तमाम तदबीरें इन्हीं के खिलाफ उलट पड़े। कुरान से रहनुमाई, मोमिन हमेशा नेक फाल लेता है और नेक फाल खैर का जरिया बनती है, और ये अल्लाह तआला के साथ हुस्ने ज़न का तकाजा भी है। जो लोगों के साथ मकारी करता है, अल्लाह तआला इसका मकर उसी के खिलाफ उलट देता है, इसका यकीन रखिए। इस बात पर हमारा मजबूत यकीन और ईमान होना चाहिए कि अल्लाह तआला अपने नेक बंदों की मदद और हिफाजत करता है। गौर व फिक्र की बात है, अल्लाह के बंदों पर जुल्म व सितम घरों की तबाही का सबब बनता है। इंसान पर जो मुसीबत और परेशानी आती है वो इसके गुनाहों के सबब आती है। जो खैर और शर पहुंचता है वो पहले से मुकद्दर हो चुका है, क्योंकि फैसला कुन तकदीर से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं। अल्लाह हमारे तकदीर के लिखे जो बुरे हैं उसको मिटा दे और उसको अच्छे में बदल दे। आज की मतरूक सुन्नत, अगर कोई आपको कर्ज दे तो आप उसको क्या दुआ दे? आज लोग ऐसी दुआएं देना लेना भूल चुके हैं। तो अब्दुल्ला बिन नबी रबिया कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे 40,000 कर्ज लिए, फिर आपके पास माल आया तो आपने मुझे अदा कर दिए और फरमाया, बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे घर वालों और तुम्हारे माल में बरकत अता फरमाए। कर्ज का बदला तो शुक्रिया अदा करना और कर्ज अदा करना ही है। निसाई की रिवायत है 4687। इससे ये भी पता चलता है कि मुसलमान कर्ज ले सकता है दूसरे मुसलमान से भी, और देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। बैंकों से सूद के साथ इधर उधर से लेने देने की बजाय बेहतर है कि आपस में एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाइए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।